मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। FEIS के आज 1 नवंबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ सूचनाएं जो सामान्य तौर पर मैं हर फ्राइडे को आप सबको दिया करता हूं, और वो ये कि सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन जो प्रेस की क्लिपिंग्स हैं अखबार की कतरने वो शनिवार को आपको एज इट इज मिलेंगी जैसे कि आपको मिलती रहती हैं। साथ ही आपको योजना के 2 आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश का, और कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी और एक इंग्लिश का। फ्रेंड्स, योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स को लेकर के अक्सर आप लोगों के प्रश्न होते हैं, और व्यक्तिगत तौर पर जब क्लासेस में स्टूडेंट्स से मुलाकात होती है तब भी वो बहुत कुछ इसके बारे में प्रश्न करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि योजना और कुरुक्षेत्र वो सरकार की पत्रिकाएं हैं और बहुत अच्छी पत्रिकाएं हैं। भले ही वो सरकार की पत्रिकाएं हों लेकिन उसमें जो लेख आ रहे हैं वो बहुत अच्छे लेख आ रहे हैं और विश्वसनीय होते हैं, और उसके जो डेटा भी होते हैं चूंकि वो ऑफिशियल डेटा होते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप अपने पिछले एग्जामिनेशंस के कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी कुछ सीधे सीधे तो नहीं लेकिन उनसे टॉपिक कवर होते हैं। इसलिए योजना और कुरुक्षेत्र आप पढ़ें या न पढ़ें यह प्रश्न दिमाग से हटा दें और उसकी जगह यह चस्पा कर लें कि नहीं, ये दोनों पत्रिकाएं हमें पढ़नी ही हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आपको उस महीने भर में योजना के 4 आर्टिकल मिल जाते हैं, कुरुक्षेत्र के 4 आर्टिकल्स मिल जाते हैं, और मैं बहुत सोच समझ कर जो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं वे प्रोवाइड करता हूं। एक काम आप कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप इनसे ही अपना मान सकते हैं कि काम पूरा हो गया, और अदरवाइज आप पत्रिका भी ले सकते हैं। 1-2 आर्टिकल्स आपको और भी महत्वपूर्ण लगते हैं तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्लीज उन्हें आप पढ़ें ही, और पढ़ें ही नहीं बल्कि उनमें जो महत्वपूर्ण बातें आपको लगती हैं आप उन्हें नोट भी कर लें, तभी आप उनका उपयोग कर सकेंगे। और इसके साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है अभ्यास के लिए, जो मुख्य परीक्षा के पैटर्न पर होता है, तो उस पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं RCT रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ बातें आपसे विसिल ब्लोअर के बारे में करना चाह रहा हूं। विसिल ब्लोअर, सीटी बजाने वाला, ये सीटी बजाने वाला कौन है? नाम बड़ा विचित्र सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? देखिए, पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मेंस में जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, यहां तक कि प्री एग्जामिनेशन में भी, उनका कोई ना कोई कनेक्शन पिछले 1-1.5 साल की महत्वपूर्ण घटनाओं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता ही है। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी, इन्फोसिस कंपनी की खबर। इन्फोसिस कंपनी में हुआ ये कि जो उसने अपने आप कह लीजिए खाता बही पब्लिक के सामने रखे, जिसे आप बैलेंस शीट कहते हैं, उसमें उसने दिखाया कि उसको इतना प्रॉफिट है। हम आंकड़ों पर नहीं जा रहे हैं, है ना, मैं बेसिक बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी को इतना फायदा हुआ। जैसे मान लीजिए कि दिखा रही कि कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, तो ठीक है, पब्लिक यही मान करके चलेगी कि भी 1,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। और आप देखिए कि जो भी कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी के मालिक हैं, उसमें बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं, लेकिन पब्लिक ने भी पैसा लगा रखा है, उस पब्लिक भी उसके शेयर खरीदती है, यानी कि पब्लिक भी उसकी कहीं ना कहीं पार्टनर है, ठीक है। तो जब कोई भी कंपनी ये दिखाएगी कि हमने 1,000 करोड़ कमाया, हमने पिछले साल 800 करोड़ कमाया था, तो स्वाभाविक है कि पब्लिक उनके शेयर खरीदने के लिए और सामने आएगी, तो उनके शेयर के रेट बढ़ जाएंगे, पब्लिक को भरोसा होगा कंपनी पर, ठीक है। अब मैं आता हूं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट यह है कि कहीं से गुप्त सूचना दी गई मैनेजमेंट को, और सरकार को भी आप दे सकते हैं, कि ये जो 1,000 करोड़ रुपए का जो फायदा दिखाया जा रहा है ये गलत है, ये सही फायदा नहीं है। हुआ यह है कि इसके जो कह लीजिए कि जो CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या इसके जो फाइनेंस के हेड हैं, इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है, आंकड़ों में कुछ हेरा फेरी की है, और आंकड़ों में हेरा फेरी करके वो 1,000 करोड़ रुपए का फायदा दिखा रहे हैं। हेरा फेरी क्या की गई, इसको आप बहुत सरल शब्दों में इस तरीके से समझ लीजिए कि कंपनी का बहुत सा धन ऐसा है जो अब उसके पास वापस नहीं आएगा, जिसे आप बैंकों का NPA कह लें, यानी कि डूबत खाता बोलचाल की भाषा में, मतलब कंपनी का इतना पैसा डूब गया है। ये जो अभी दिखाया गया है जो प्रॉफिट, उसमें उस डूबत को घटाया नहीं गया है। जैसे मान लीजिए कि 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया, कंपनी के पास 300 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो अब उसको नहीं मिलेंगे, किसी न किसी वजह से वो डूब गए हैं, तो सीधी सी बात है कि आप 1000 करोड़ रुपए में से 300 करोड़ रुपए घटा दीजिए तो नेट प्रॉफिट आपका 700 करोड़ बचता है। लेकिन यह नहीं किया गया, और ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है कि जो सीईओ हैं और जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, या कह लीजिए कि जो भी उसमें इस तरह से बड़े पदों पर काम कर रहे हैं जिनको बहुत मोटी तनख्वाह मिलती है, उनको लगता है कि भाई हम अपने पीरियड को तो संभाल करके रखें, अगर हम घाटा दिखा देंगे या पिछले साल की तुलना में कम प्रॉफिट दिखा देंगे तो फिर इसका दुष्प्रभाव तो हम पर पड़ेगा, लोग हमसे कहेंगे कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो, तो हमारे कैरियर पर आंच आएगी, इसलिए हेरा फेरी करके दिखा दो। और ये अब ये जो गुप्त सूचना देने वाले जो लोग थे दोस्तों, इन्हें कहा जाता व्हिसल ब्लोअर, व्हिसल ब्लोअर जिन्होंने सीटी बजा दी, लेकिन पता नहीं सीटी किसने बजाई। व्हिसल ब्लोअर बकायदे एक आप कह लीजिए कि एक नाम है जिसमें आप कंपनी के बारे में या किसी के भी बारे में या सरकारी तंत्र के बारे में भी सरकार के पास गुप्त सूचनाएं भेजते हैं, और उसमें आप अपनी कोई आइडेंटिटी मेंशन नहीं करते, ना अपना नाम, ना अपना पता, ना अपना फोन नंबर, पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये शिकायत भेजी किसने है, और ऐसे भेजने वालों को कहते हैं व्हिसल ब्लोअर। अब आप देखिए कि उसका प्रभाव यह हुआ कि अब कंपनी उसकी जांच कर रही है, और इन्फोसिस कंपनी जो इतनी प्रतिष्ठित कंपनी मानी जाती थी, यूं कह लीजिए कि जिसे एक तरह से कॉरपोरेट जो गवर्नेंस होता है उसका मॉडल माना जाता था हमारे देश में, उस पर कहीं ना कहीं आंच आ गई है। अभी अपना नाम इसलिए नहीं देते हैं, आप जानते हैं कि नाम देने के बाद अलग तरह के संकट उठ खड़े होते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, और लगातार भारत में भी इसकी कोशिश की जा रही है कि ये जो व्हिसल ब्लोअर होते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनकी रक्षा के लिए कानून बनाया जाए, लेकिन अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2-3-4 साल पहले बाकायदे व्हिसल ब्लोअर पर जब कानून बनाने की बात हो रही थी, और उसमें ये कोशिश हो रही थी कि इस कानून को कमज़ोर कर दिया जाए, उसको लेकर के क्वेश्चन भी मेन एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो चूंकि इन्फोसिस कंपनी से जुड़ा हुआ है मामला है, और इन्फोसिस कंपनी आप जानते हैं नारायण मूर्ति जी और नंदन नीलकिनी जी के द्वारा स्थापित की गई कंपनी है, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, इसलिए मुझे लगता है कि एक बार फिर से व्हिसल ब्लोअर का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं चर्चा करता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और वह है RCT रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ये क्या है? दरअसल अभी आपको मालूम है कि जो नोबेल प्राइज मिला है अर्थशास्त्र का, भारत इस पर गर्व कर सकता है कि वो हमारे भारत के हैं, जिनका नाम है अभिजीत बैनर्जी। इनके बारे में आपने काफी सुना होगा, पढ़ा भी है। अभिजीत बैनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डल्फो और माइकल क्रेमर, और इन तीनों ने मिलकर के आप यूं कह लीजिए कि गरीबी विरोधी नीतियों पर काम किया, और उनकी नीतियों को बहुत से दुनिया के बहुत से देशों में, खासकर जो विकासशील और अविकसित देश हैं उनमें लागू किया जा रहा है, और उनके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। काफ़ी कुछ इन पर लिखा गया है, मैंने आपको आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स भी खूब सारे प्रोवाइड किए हैं, और मुझे लगता है कि उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके समझ चुके होंगे। मैंने स्पेशली RCT को अपने मुख्य विषय के रूप में उठाया है ताकि मैं एक अलग से आपको स्पेशल इसके बारे में जानकारी दे सकूं। देखिए, RCT जो है जिसका फुल फॉर्म है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, ये बेसिकली दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल में यूज की जाती है। क्लिनिकल ट्रायल यानी कि जब कोई दवाई बन जाती है तो फिर उसका ट्रायल लिया जाता है आदमी पर, उसका यूज कर, या कह लीजिए कि उसको प्रस्क्राइब करने से पहले ये देखा जाता है कि कितना यूजफुल है, इसके कोई साइड इफेक्ट हैं या नहीं है, बहुत गहराई के साथ, बहुत बारीकी के साथ, और लंबे समय तक उसका ट्रायल किया जाता है। यह बेसिकली इसी तरह का एक ट्रायल है जो आप यूं कह लीजिए कि गरीबों के ऊपर किया जा रहा है। इसे आप और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनका व्यवहार कैसा होता है, वो कैसे सोचते हैं, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, तो उनके व्यवहार को का अध्ययन करने के लिए इस आप कह लीजिए पद्धति का प्रयोग किया गया। तो इसे उन्होंने नाम दिया है RCT पद्धति, तो शब्द उन्होंने ज्यों का त्यों वहां से ले लिया। आइए एक उदाहरण के जरिए मेरी समझ से इसे समझने में ज्यादा आसानी होगी। पहली बात तो यह है कि इससे होता यह, जब आप इस पद्धति से किसी भी नीति को परखते हैं या लागू करने से पहले ही उसका ट्रायल करते हैं, तो यह बहुत विस्तार के साथ चीजों को लेकर के नहीं चलती, एक पर्टिकुलर चीज चुनती है यानी एक ही डायमेंशन को, और उस एक डायमेंशन पर वो अपना ध्यान केंद्रित करती है। जैसे मान लीजिए गरीबी पर आपको करना है, तब गरीबी पर नहीं तो आप स्वास्थ्य पर भी कर रहे हैं, उनके भुखमरी पर भी कर रहे हैं, और उनके शिक्षा पर भी कर रहे हैं, और वो कैसे स्थान पर रह रहे हैं उन पर भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसके एक एक चीज को अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो खासकर, चलिए, खराब शिक्षा, भारत में शिक्षा पद्धति खराब है, इसको लेकर के आप ट्रायल करना चाह रहे हैं कि क्यों है, क्या है, कैसे बेहतर बनाया जाना चाहिए। तो आप देखिए कि स्थिति चुनी गई, और उसमें से जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास किताबें नहीं होती, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो भूखे ही स्कूल जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो वहां पढ़ाने वाला टीचर ही एक होता है। ये तीन स्थितियां हो गई, ये तीन तरह की स्थितियां हो गई। अब आप देखिए कि इन तीन तरह की स्थितियों में आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि जो शिक्षा की स्थिति खराब है वो क्या इसलिए है क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, क्या इसलिए खराब है कि वो भूखे स्कूल जाते हैं तो वहां ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, या इसलिए खराब है कि वहां पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं है, एक ही टीचर है, वही सब काम कर रहा है और वही सबको पढ़ा रहा है, तो आप इसमें से किसे सही मानेंगे, फिर किसे सुधारेंगे। तो इस पर प्रयोग किए गए, मतलब इसमें से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी है, तो तीन ग्रुप हो गए। तो उसमें से क्या हुआ कि एक को मान लीजिए कि किताबें देते दे, चलो किताबें नहीं है इनके पास, इनको किताबें दे दी गई, जो बच्चे भूखे जिस स्कूल जाते हैं उनको भोजन दे दिया गया कि ठीक है वो भूखे ना रहे, और तीसरे को कुछ नहीं दिया गया, इन दोनों में से कुछ नहीं दिया गया। तो फिर ये पता चला कि ये तीनों ग्रुप कुछ की जब तुलना की गई तो इनके व्यवहार में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, यानी कि किताबें दे देने से न तो शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ, न ही मुफ्त भोजन दे देने से, मिड डे मील कह लीजिए, कि उनके पढ़ाई के स्तर में कोई फर्क आया, और टीचर्स के बारे में कुछ नहीं किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि क्या किया जाए, उसके आधार पर फिर आगे चल करके निष्कर्ष निकाला गया। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अभिजीत बैनर्जी और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उदयपुर में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया था, और प्रयोग ये किया गया उदयपुर उसके आसपास में कि जैसे टीकाकरण, तो उन्होंने कहा कि जब कोई टीकाकरण कराने आए, जब माताएं टीकाकरण लगवाने आए अपने बच्चों को, तो उन्हें 1 किलो दाल मुफ्त में दी जाए, बस केवल ये किया गया। तो ये पाया गया कि जो टीकाकरण का जो प्रतिशत था वो लगभग दुगुना हो गया, और साथ ही साथ टीका लगाने का जो खर्च था वो घटकर आधा हो गया। उसका कारण ये रहा कि दाल के अट्रैक्शन में, उनके लिए तो दाल बहुत बड़ी चीज थी, तो दाल के अट्रैक्शन में वो टीका कराने के लिए आने लगे। अब जब टीका एक दिन में काफी होने लगा तो टीकाकरण कराने का जो खर्च था वो काफी घट गया। तो अब इस तरीके से जो प्रयोग किए जाते हैं उसे ही कहा जाता है RCT, यानी कि नीतियों का आप यूं कह लीजिए कि ट्रायल करना, कारणों का को बहुत अच्छे तरीके से एक एक आयाम में देख करके उन्हें जानना। और इन तीनों नोबल लॉरेट्स जिन्हें अर्थशास्त्र का मिला है इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, और इनकी अभी पूरी दुनिया में काफी चर्चा हो रही है, और ये माना जा रहा है कि गरीबी निवारण के दिशा में इनकी जो नीतियां हैं काफी प्रभावी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप सब अपने अपने ढंग से देख लेंगे। 2 दिनों की अब छुट्टियां हैं, आपसे अब 2 दिनों के बाद ही मेरी मुलाकात हो सकेगी। 2 दिनों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दोस्तों अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।